समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
जी हाँ, अंधेरों द्वारा मन को छलने की एक सीमा होती है और कभी ना कभी तो उदासी की परत जीवन से हटती ही है। कहा भी गया है कि अंधेरा मिटता नहीं है, मिटाना पड़ता है, बुझे चराग को फिर से जलाना पड़ता है। वहीं कहा यह भी गया है कि अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। इसी सकारात्मक विचार के साथ शुक्रवार की एक नई नवेली सुबह में ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ समाचार पत्रिका कार्यक्रम आज सवेरे लेकर आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और नीना अर्कल। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
हेलो रवि। यस, यू हैव राइटली सेड, नेचर हैज इट्स सीजंस एंड लाइकवाइज लाइफ टू हैज इट्स सीजंस। Nothing remains forever and everything change with enthusiasm will get us through. A very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 26th of September. So let's begin with the headlines.
जी बिल्कुल नीना, शुरू कर लेते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला योजना की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रूपये ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया है कि बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके स्वयं रोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के पहले दिन 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की कड़ी में यह योजना आज शुरू की जा रही है। इसके तहत 7500 करोड़ रुपए DBT के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की परिकल्पना की गई है। सरकार ने कहा है कि रोजगार सही दिशा में जाने पर लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stressed on the correlation between international peace and global development at the G20 Foreign Ministers meeting in New York. In his address, Dr. Jaishankar said the costs, especially to the Global South in terms of energy, food and fertilizer security, were starkly demonstrated by ongoing conflicts, particularly in Ukraine and Gaza. Dr. Jaishankar also called terrorism a persistent threat to development. It is imperative that the world displayed neither tolerance nor accommodation to terrorist activities, it added.
It is imperative that the world display neither tolerance nor accommodation to terrorist activities. Given the extensive networking among terrorists, those who act against them on any front actually render a larger service to the international community as a whole. As we confront conflict, economic pressures and terrorism, the limitations of multilateralism and the United Nations in particular are visible. The need for reforming multilateralism has never been greater.
निर्वाचन आयोग ने चुनावों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए डाक मत पत्रों की गिनती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अभी तक ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती से अलग होती थी। ये कभी कभी डाक मतपत्रों की पूरी गिनती होने से पहले ही समाप्त हो जाती थी। इससे प्रक्रिया में एकरूपता को लेकर भ्रम और प्रश्न उठते थे। इस समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग ने ये अनिवार्य कर दिया है कि ईवीएम वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर सभी डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ही शुरू होगा। इससे मतगणना की दोनों विधियों के बीच एक रूपता सुनिश्चित होगी और विसंगति की संभावना समाप्त हो जाएगी।
Home Ministry has cancelled the FCRA certificate of Sonam Wangchuk's NGO. Sources said that according to official findings, Sonam Wangchuk had deposited 3.5 lakh rupees into the FCRA account of the association in violation of Foreign Contribution Regulation Act 2021-22. The NGO had also received 4,93,205 from a Swedish donor for educational programs on issues including migration, climate change, food security and sovereignty. The ministry said a foreign contribution cannot be accepted for study on sovereignty of the nation and said the act is against the national interest of the country, citing violations under sections 81A, 17, 18, 19 and conditions of registration under section 12(4) of the FCRA. The ministry exercised its powers to cancel the NGO's FCRA registration certificate with immediate effect. Palestine President Mahmoud Abbas has condemned Hamas and expressed willingness to work with US President Donald Trump on a UN-backed peace plan. Speaking via video after being barred from the UN General Assembly, Abbas said that he was ready to work with the US, France and Saudi Arabia to implement the peace plan adopted this week by the UN General Assembly, where the number of countries recognizing Palestine's statehood rose to more than 150. Abbas warned against Israeli moves to annex Palestinian territories which threaten the two-state solution supported by the UN. While Trump pledged not to allow annexation, he does not support a two-state solution or recognizing Palestine. India under 17 men's football team secured a 3-0 victory over Nepal in the semi-final of the SAFF under 17 championship in Colombo, Sri Lanka. This win ensures their place in the final, where they will face Bangladesh, who earlier triumphed 2-0 over Pakistan. Wangkerak Pum Gunliba opened the scoring in the 61st minute, followed by goals from substitutes Azlan Shah in 80 minute and Diamond Singh Dokchom in 90+4 time to complete the dominant performance. With this win, the Blue Coals continue their unbeaten run and remain on track for a fourth consecutive title in the tournament.
और नीना, एशिया कप क्रिकेट में एशिया कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में सुपर फोर के मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच दुबई में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल दुबई में सुपर फोर के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। रविवार को फाइनल में पाकिस्तान का सामना भारत से होगा। एशिया कप के 17 संस्करणों में पहली बार फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, राजधानी दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता के समाचारों पर एक नजर। तो नीना अर्कल शुरुआत कर रही हैं चेन्नई के समाचारों से।
यस रवि, स्टार्टिंग विद चेन्नई। एन एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई विद 152 passengers on board was diverted to Bengaluru last night as the flight's attempts to land in Chennai failed. The flight later returned to its destination at 11:15 p.m. and departed for Delhi an hour before scheduled time. The flight was originally scheduled to reach Chennai at 8:30 p.m. However, it could not land on the first attempt and had to go around after coming closer to the runway. Since the second attempt was also unsuccessful, the pilot diverted the flight to Bengaluru without making another attempt to land in Chennai. An Air India spokesperson said that the flight was diverted due to operational reasons but did not elaborate. Two men were arrested on Thursday in connection with a 70-year-old woman losing 2.5 crore through a fake online trading platform. A former employee of the sports department, she came across an online advertisement promoting an investment scheme. Between November last year and Jan this year, she had invested 2.5 crore in the scheme. However, she found out that it was a fake platform. Later, she lodged a complaint with the Central Crime Branch Police, who traced the fraudulent transactions to a private bank linked to a hotel in Tirupur. Multiple bank accounts were found to be connected to cyber crime cases registered in different states.
और अब कुछ समाचार दिल्ली से. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कल 11 कैट्स एम्बुलेंस को जनता को समर्पित किया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टीबी की आधुनिक जांच के लिए 40 ट्रूनेट मशीनें, 10 पैथो डिटेक्ट मशीनें और 27 हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन भी जनता को समर्पित की. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अंगदान के लिए डिजिटल पोर्टल और नेहरू बाल चिकित्सालय में नया जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र की शुरूआत की गई है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नर्सों की स्थायी नियुक्ति, सैकड़ों आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना, अत्याधुनिक जांच मशीनों की व्यवस्था और बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान के माध्यम से पहली बार स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाया है. कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल पंजाबी बाग में दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित पजल कार पार्किंग का उद्घाटन किया. वहीं श्रीमती गुप्ता ने भारत दर्शन पार्क में स्वचालित मल्टी लेवल कार पार्किंग का शिलान्यास किया. इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये पार्किंग सिस्टम सैकड़ों वाहनों को सुरक्षित रखने का स्थान देंगे, सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करेंगे और नागरिकों को सुगम और व्यवस्थित अनुभव प्रदान करेंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का लक्ष्य शहर में 100 से अधिक स्वचालित पार्किंग सिस्टम स्थापित कर शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में नई मजबूती प्रदान करना है. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और सांसद कमलजीत सहरावत के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित रहे. एक और समाचार नीना दिल्ली से ही. नई दिल्ली में भारत मंडपम में कल से वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 शुरू हो गया है. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया. चार दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक आयोजन में 90 से अधिक देश और 2000 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य भारत को खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य आपूर्ति के लिए वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है. इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्वभर से भाग ले रहे उत्पादकों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, उपकरण निर्माताओं, लॉजिस्टिक कंपनियों, कोल्ड चेन कंपनियों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, स्टार्टअप और नव प्रवर्तकों, खाद्य खुदरा विक्रेताओं को एक ही मंच पर अपने आप को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है. चार दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लगभग 1 लाख आगंतुकों के आने की उम्मीद है.
And now news from Bengaluru. All India Financial Borrowers Federation has requested Prime Minister Narendra Modi to bring out a comprehensive borrower-friendly reforms that can extend credit to farmers at nominal interest rates. Speaking at the Empowerment and Awareness Program in Bengaluru yesterday, the Chairman and Managing Director of the Federation, Dayanand, has said that every day about 48 farmers commit suicide in India due to financial debt trap. The collateral sought by the banks is much more than the loan given, and the interest rate is exorbitant, leaving the farmers in a debt trap. Hence, he has requested the Prime Minister to bring in comprehensive borrower-friendly reforms.
और अगला समाचार महाराष्ट्र से. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नवी मुंबई में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए मथाडी मजदूर आंदोलन को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. ये कार्यक्रम वरिष्ठ नेता अन्ना साहेब पाटिल की 92वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिन्होंने अपना जीवन मथाडी मजदूरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था. श्री फडणवीस ने स्वीकार किया कि जब भी मथाड़ी श्रमिकों के हितों पर सवाल उठे हैं, आंदोलन मजबूत रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहेगी.
टाइम फॉर न्यूज फ्रॉम हैदराबाद. रवि, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू टेक ओवर द हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 1 व्हिच इज अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एज पार्ट ऑफ द वन टाइम सेटलमेंट द गवर्नमेंट विल पे 2100 करोड़ रुपीज टू L&T टुवर्ड्स इट्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो टेक ओवर द प्रोजेक्ट्स डेट ऑफ अप्रोक्सिमेटली 13,000 करोड़ रुपीज एन ऑफिशियल रिलीज yesterday stated that the development follows discussions between Chief Minister A. Revanth Reddy and L&T Chairman and Managing Director S.N. Subramanian and with other senior officials to resolve issues and pave the way for the second phase of the metro project. The metro second phase is awaiting clearance from the centre for a joint venture with the state government. The takeover process is to be carried out in a calibrated and mutually agreeable manner, ensuring all legal and statutory compliances. Initially, the Chief Minister had invited L&T to participate in the metro expansion second phase as an equity partner, but the proposal was declined. The L&T expressed inability to sign an integration pact between Phase 1 and the proposed Phase 2, citing concerns over seamless train operations, revenue sharing and cost mechanisms.
और मेट्रो श्रृंखला का अंतिम समाचार कोलकाता से नीना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में 3 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह आज सुबह कोलकाता में सेवक संघ पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे। वे कोलकाता के लेबूतला स्थित संतोष मित्रा स्क्वायर पूजा पंडाल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर में पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र EZCC जाकर एक और दुर्गा पूजा मंडप का वे उद्घाटन करेंगे। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी FM गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और नीना के साथ। और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
Here's weather report from Chennai, Bengaluru and Hyderabad now. Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The temperature will hover between a minimum of 20 degrees and a maximum of 30 डिग्री सेल्सियस।
और आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को, जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन नीना, उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच के जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूक करना और सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना है। ये दिवस शुरू कैसे हुआ, तो उसका उत्तर यह है नीना कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ यानी IFEH ने 26 सितंबर 2011 को इंडोनेशिया में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की थी। और साथ ही नीना, आज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस भी है, जो हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है।
Yes, today is the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. It is marked annually on 26 September. Achieving global nuclear disarmament is the highest disarmament priority of the United Nations. Yet, today around 12,241 nuclear weapons remain. The total elimination of nuclear weapons provides an occasion for the world community to reaffirm its commitment to global nuclear disarmament as a priority. It provides an opportunity to educate the public and the leaders about the real benefits of eliminating such weapons and the social economic costs of perpetuating them. Commemorating this day at the United Nations is one of the humanity's greatest challenges to achieve the peace and security of a world without nuclear weapons. And Ravi, no one wins a nuclear war. All of us lose. So it should never be fought. That is said by Ronald Reagan.
Bilkul, bilkul. Aur Japan ka udharan hum सबके सामने
yes,
आज तक है।
we don't need any more hero Shimas.
तो इसी जानकारी के साथ आइए अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को। नीना,
In 1580, Francis Drake completes his circumnavigation of the world, sailing into Plymouth, England, aboard the Golden Hind.
1872 में आज के दिन न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना था।
In 1905, Albert Einstein publishes the third of his Annus Mirabilis papers on mass energy equivalent. Or E is equal to MC square. This work became a cornerstone of modern physics and reshaped how we understand energy, mass and relativity. In 1932, Gandhiji breaks fast on Indian government's acceptance of his demand regarding Harijans.
1959 में आज के दिन जापान के इतिहास में सबसे शक्तिशाली तूफान वेरा से 4,580 लोगों की मौत और 16 लाख लोग बेघर हुए। 1960 में आज के दिन अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच बहस का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था।
In 1975, Constitution Bill 1975, placing election of the President, Vice President, Prime Minister and Speaker of the Lok Sabha beyond the scrutiny of the judiciary approved by Parliament.
और 1984 में आज के दिन United Kingdom हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत हुआ था।
In 1985, P.T. Usha sets record for 100 meter in 11.39 seconds at Jakarta. In 1991, Ordinance to amend Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act and the Companies Act totally removes pre-entry restrictions on new industrial houses and expansion of the existing ones.
Or अंत में 2011 में दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया। संयुक्त राष्ट्र ने विज्ञप्ति में कहा कि इस परिवहन प्रणाली ने शहर का प्रदूषण स्तर एक साल में 6,30,000 टन कम किया है। और अब समय हो गया है नीना कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों जयंतियों या जन्मदिन के बारे में बात करने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी टी बी कुन्हा का, जिनका जन्म हुआ 2 अप्रैल 1891 गोवा में और इनका निधन हुआ 26 सितंबर 1958 में। टी बी कुन्हा ने अपना सब कुछ निछावर करके गोवा को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। डॉक्टर टी बी कुन्हा जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपार कष्ट सहकर गोवा को 1961 में स्वतंत्रता दिलाई। आधुनिक भारत के यशस्वी सपूत टी बी कुन्हा गोवा के जनक के रूप में माने जाते हैं। वे एक दूरदृष्टा राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी थे।
Today we remember Robert Allen Palmer. He was an English singer, songwriter, musician and record producer. He was known for his distinctive soulful voice, sartorial elegance and for combining soul, jazz, rock, pop, reggae and blues. Palmer's involvement in the music industry began in the 1960s, covered 4 decades and included a spell with band Vinegar Joe. He found success both in his solo career and with Power Station and had top 10 songs in both UK and the United States in 1980s. His hit singles were Addicted to Love and Simply Irresistible. Let's listen to Robert Palmer, Addicted to Love.
नीना, अब बात करते हैं हिंदी फिल्म जगत के महान पार्श्व गायक और संगीतकार रहे हेमंत कुमार मुखोपाध्याय के बारे में, जिनका जन्म हुआ 16 जून 1920 वाराणसी उत्तर प्रदेश में और आपने इस दुनिया से विदा ली 26 सितंबर 1989 पश्चिम बंगाल से। वे हेमंत दा के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्म संगीत की जानी मानी शख्सियत हेमंत कुमार न सिर्फ मौसिकी के माहिर थे बल्कि बेहतरीन फिल्म निर्माता भी थे। बांग्ला भाषा के अनेक गैर फिल्मी एल्बम को सुर देने वाले हेमंत कुमार ने कई मशहूर हिंदी गीतों को भी अपनी मधुर आवाज दी थी और संगीत की नब्ज का मिजाज समझने में दक्ष इस कलाकार को रविंद्र संगीत का विशेषज्ञ भी माना जाता था। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन से सजी कुछ मुख्य फिल्में हैं अनारकली, नागिन, प्यासा, गंगा जमुना, फरार, बात एक रात की, कोहरा, झनक झनक पायल बाजे, 20 साल बाद, साहब, बीबी और गुलाम आदि आदि। तो सुन लेते हैं हेमंत कुमार की ही आवाज में कुछ सदाबहार गीतों की एक छोटी सी मेडली।
जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजलियां आपकी अदा चुरा न ले कहीं। यूं कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
Olivia Newton-John is an English-born Australian singer, songwriter, actress, entrepreneur, dancer and activist. She is a four-time Grammy winner. 11 of her singles and 14 of her albums have been certified gold by the RIAA. She starred in the musical film Grease and its soundtrack is one of the most successful in history, featuring the singer You're the One That I Want with John Travolta. Here's the song.
अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, जिनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1820 पश्चिम बंगाल में और निधन हुआ 29 जुलाई 1891 कोलकाता में। वे गरीबों और दलितों के संरक्षक माने जाते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर बहुत ही जोर दिया था। नीना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय सहित अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना करवाई और वर्ष 1848 में वैताल पंच विशंती नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया।
थॉमस स्टर्न्स एलियट वॉज अ पोएट, essayist, publisher, playwright and literary and social critic. Born in St. Louis, Missouri to a prominent Boston Brahmin family, he moved to England in 1914 at the age of 25 and would settle, work and marry there. He became a British subject in 1927. Here's a recitation from his poem J. Alfred Prufrock, The Love
Time
Song.
For you and time for me, and time yet for 100 indecisions and for 100 visions and revisions before the taking of a toast and tea. In the room, the women come and go, talking of Michelangelo. And indeed, there will be time to wonder, do I dare, and do I dare? Time to turn back and descend the stair with a bald spot in the middle of my hair. They will say, how his hair is growing thin. My morning coat, my collar mounting firmly to the chin, my necktie rich and modest, but asserted by a simple pin. They will say, but how his arms and legs are thin. Do I dare disturb the universe?
और अब बात कर लेते हैं भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता रहे और जो जीवन भर सक्रिय रहे और हमेशा चर्चित रहे, नीना, वो नाम जिनका नाम है धर्मदेव आनंद और जो बहुत प्रसिद्ध हुए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद के नाम से। जी बिल्कुल। आपका जन्म हुआ 26 सितंबर 1923 पंजाब में और निधन हुआ 3 दिसंबर 2011 लंदन में। देवानंद अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक भी रहे। वे बॉलीवुड में देव साहब के नाम से एक जिंदा दिल और बहुत ही भले इंसान के रूप में प्रसिद्ध थे। भारतीय सिनेमा में 2 पीढ़ियों तक लगातार हीरो बने रहने वाले वे कलाकार के उनके विषय में अगर विचार करें तो केवल एक ही नाम उभरता है और वो नाम है सिर्फ देवानंद का।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ा।
पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले झूठा ही सही।
दिल आज शायर है गम आज नगमा है।
चलते चलते आज का विचार कि पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और नीना अर्कल को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार।
आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से